ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகண நிலை அவ்யக்த அவிநாசி சர்வேஸ்வர் ஜெகத் நியந்தா ஜெகதாதார் பார் பிரம்ம பரமாத்மா பகவத் சரணானுராகி நானா நாமோ மே நானா ரூபோ மே உபஸ்தித் மேரி அப்னி பிரிய ஆத்மா. கல் கே பிரசங்க மே ஈஷாவாச உபநிஷத் கே சட்டே மந்திர கோ லேகர் விசார் கர் ரஹே தே. யஸ்து சர்வாணி பூதான்யே மேவானுபஷ்யதி சர்வபூதேஷு சாத்மனம் ததோ ந பீஜ உஷ்யதே. जो साधक संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखता है और समस्त भूत आत्मा में देखता है, ऐसा सम्यक दर्शन करने वाला साधक किसी से घृणा नहीं करता, अर्थात कल चर्चा कर रहे थे घृणा द्वेष के कारण होती है और द्वेषात्मक बुद्धि की एक वृत्ति है, जैसे कि रागात्मक है, राग के साथ द्वेष जुड़ा रहता है, द्वेष के साथ राग जुड़ा रहता है, जैसे दिन के साथ रात जुड़ी हुई है, रात के साथ दिन जुड़ा हुआ है, सुख और दुख का जोड़ा है, दिन रात का जोड़ा है, सुबह शाम का जोड़ा है, उसी भांति राग और द्वेष। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं राग करूं और द्वेष छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जहां राग होगा वहां अनिवार्य रूप से द्वेष भी होगा, और जहां द्वेष होगा वहां निश्चित रूप से राग भी होगा। इसलिए राग और द्वेष दोनों वृत्तियों से हमारी बुद्धि निवृत्त हो, अलग हो, दोनों वृत्तियों से बुद्धि को अलग करना है। बोले कैसे? विचार पूर्वक, गंभीरता पूर्वक हम विचार करें और विचार के द्वारा, विवेक दृष्टि के द्वारा अपने मैं को अलग करें, और जब बुद्धि को अलग करेंगे शरीर से और बुद्धि से मैं अलग हूं, बुद्धि का मैं दृष्टा हूं, ऐसा समझ करके, या यूं कहिए ईश्वर प्रदत्त इंद्रियां, ईश्वर प्रदत्त शरीर, ईश्वर प्रदत्त कार्य और ईश्वर के लिए, ईश्वर स्मरण को लेकर के हमें कार्य करना है। ये शरीर किसका? बोले ये ईश्वर का दिया हुआ। ये इंद्रियां किसकी? ईश्वर की दी हुई। ये भोग किसका दिया हुआ? ईश्वर का दिया हुआ। ये कार्य किसका? ईश्वर का कार्य। और ईश्वर स्मरण से और ईश्वर का स्मरण करते हुए यदि हम कार्य करेंगे तो वह कार्य हमारे लिए कभी बंधन का अर्थात राग का कारण नहीं बनेगा, न राग का कारण रहेगा और न ही द्वेष का कारण रहेगा। सरल सा उपाय है कि ये सब ईश्वर भाव से, सम्यक भाव, ईश्वर दर्शन करते हुए, परमात्मा का दर्शन करते हुए ये कार्य हम करें। और इसी मंत्र को आगे सातवें मंत्र में बताया, यस्मिन् सर्वभूतानि आत्मन्नेव विभुजानति तत्र को सोह का को मोह क स क एकत्व मनुपश्चित। अर्थात जिस ज्ञानी पुरुष में सर्वभूतात्मा सर्वभूत रूप आत्मा जिसका हो गया हो, वह सब में एकत्व का दर्शन करने वाला जो ज्ञानी पुरुष है, उसके अंदर न तो कहीं मोह होता है और न कहीं उसके अंदर शोक होता है। बोले मोह होगा तो शोक होगा, मोह हमेशा वर्तमान के साथ में है, मोह वर्तमान के साथ में है, शोक जो हो चुका है बीत चुका है, शोक व्यक्ति उसका करता में जो भूतकाल में व्यतीत हो चुका है, ऐसा हुआ था ऐसा था जो व्यतीत हो गया उसके लिए शोक करता है, और जो मोह है उसके अंदर जो आसक्तियां हैं ये कहीं छूट न जाए, अलग न हो जाए, नष्ट न हो जाए, छिन न जाए, इस प्रकार की उसे उसके साथ भविष्य के लिए जिसमें आशंकाएं बनी रहती हैं कि कहीं इसे कोई मुझसे छीन न ले, कहीं ये नष्ट न हो जाए, कहीं ये चोरी न हो जाए, कहीं ये खराब न हो जाए, इस प्रकार उसके लिए भविष्य के लिए आशंकित होकर के उसे हम अपने पास बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात भविष्यगत है। परंतु ज्ञानी के अंदर ये दोनों चीजें नहीं है। बोले क्यों? कि ज्ञानी के अंदर वह वर्तमान में, वर्तमान इतना छोटा है, इतना छोटा है, जो सांस हम ले चुके खत्म हो गई वो भूत बन गई, जो सांस लेंगे वो भविष्य है, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जो सांस हमारे अंदर चल रही है केवल उतनी भर सांस भर, जो सांस भीतर चल रही है केवल उतनी ही सांस, इतनी छोटी वर्तमान है नारायण। परंतु जिसे हम एक सांस का ये पता नहीं है कि अगली सांस हम लेंगे अथवा नहीं लेंगे, परंतु हम स्वयं सोचें कि हम भविष्य के लिए कितनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, कितनी सुंदर सुंदर योजनाएं बनाते हैं कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे ये करेंगे, परंतु ज्ञानी न तो वो भविष्य के लिए चिंतित मोह करता है और न बीते हुए के लिए शोक करता है, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मदर्शी है, तत्ववेता पुरुष है, उसमें भूत वर्तमान का भविष्य का कोई भेद नहीं है, उसकी दृष्टि काल भेद को पार कर चुकी होती है, इसलिए कहीं उसका किसी के साथ कोई मोह नहीं है। आत्मस्वरूप से सब में दर्शन करने वाला वह व्यक्ति, वह आत्मस्वरूप में जिसकी स्थिति है, ऐसा सत्पुरुष हमसे मोह की जहां तक बात आती है नारायण, मोह छोड़ने की बात आती है, शोक छोड़ने की बात आती है, घृणा छोड़ने की बात आती है, ये सब चीजें जिन्हें श्रुतियां हमें त्यागने के लिए कहती हैं उसे त्याग नहीं पाते हैं। बोले मोह ऐसा है, मोह का बंधन जो यूं तो प्रत्येक व्यक्ति कोई भी अपने आप को बंधन में बांधना नहीं चाहता, क्योंकि स्वभाव से वो स्वतंत्र है, स्वाभाविक रूप से तो वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र स्वभाव होने के कारण वह अपने स्वभाव बस बंधना नहीं चाहता है, मुक्त रहना चाहता है, कोई भी बंधन को स्वीकार करना नहीं चाहता। परंतु राग का बंधन इतना सूक्ष्म बंधन है कि ये इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है जो आंखें संसार को देखती है। मोह को देखने वाली आंखें माने दृष्टि, वो दूसरी दृष्टि है। कौन सी दृष्टि? बोले ये मोह की को देखने के लिए विवेक दृष्टि की आवश्यकता है। विवेक पूर्वक आप देखें तो मोह का बंधन इतना सूक्ष्म बंधन है, इतना सूक्ष्म बंधन है कि जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु जिसे देखने के लिए मन की आंख चाहिए माने विवेक की आंख चाहिए, इस आंख से इसे देखें तो इस बंधन में हम स्वयं, हम कहते हैं हमें मोह ने पकड़ लिया है। वास्तविकता ये है कि मोह हमें नहीं पकड़ता है, हम स्वयं उस मोह के साथ, उस राग के साथ स्वयं लिप्त होते चले जा रहे हैं, बदते चले जा रहे हैं। जैसे मकड़ी कहीं से तंतु को लाती नहीं है, वो स्वयं अपने में से पैदा करके स्वयं उस तंतु के साथ उलझती चली जाती है, ताना उस जाल के साथ उलझती चली जाती है, फंसती चली जाती है। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपनी नासमझी, अविवेक के कारण, अविचार के कारण अपने आप से एक अपने आसपास ऐसा ताना बाना बुन लेता है जिसके अंदर वो स्वयं उलझता चला जाता है और वो समझता है कि मुझे किसी ने बांध लिया है, मुझे किसी ने जकड़ लिया है, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। पर वास्तविकता ये है कि उसे कोई नहीं पकड़ता। इस पर एक छोटे से उदाहरण से समझे कि एक माँ एक संत के पास गई और जाकर बोली, महाराज ऐसी कृपा करो कि बस मेरा मोह टूट जाए, मैं संसार के मोह से, मैं समझती हूँ कि ये संसार कुछ नहीं है परंतु फिर भी मेरा मोह छूटता नहीं है और कम नहीं होता है, मेरे मोह ने मुझे बहुत जकड़ लिया है, बस आप ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा मोह छूट जाए। माँ बोलती रही बोलती रही, महात्मा चुपचाप सुनते रहे और कोई उत्तर दिए बिना यकाएक महात्मा उठे और उठकर एक वृक्ष के साथ लिपट गए और वृक्ष के साथ दोनों हाथों से बांध करके अपने हाथों में वृक्ष के साथ लिपट गए और लिपट करके जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई मुझे छुड़ा ले, कोई मुझे छुड़ा ले, बचा लो बचा लो, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। माँ सुन, वो माता सुन रही थी, मन में विचार करने लगी, अभी तक तो महात्मा बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए थे और यकाएक इनको क्या हो गया और पेड़ को लिपट गए जाकर के, जकड़ लिया इन्होंने अपनी बाहों में पेड़ को और चिल्ला रहे कि मुझे पेड़ ने पकड़ लिया है, पेड़ ने पकड़ लिया है। और माँ पास गई और कहने लगी, महाराज ये पेड़ आपको कहाँ पकड़ सकता है, इस पेड़ की क्या ताकत है कि आपको पकड़ ले, आपने देखो अपनी बाहों में इस पेड़ को जकड़ा हुआ है, आप अपने हाथों को हटाइए, अपने बाहों को अलग कीजिए तो देखो पेड़ आपसे बिल्कुल अलग है। महात्मा बोले, नहीं, मेरी बाहें इस वृक्ष के साथ, इस वृक्ष ने अपने साथ चिपका ली हैं, मैं इस वृक्ष ने मुझे पकड़ लिया है। माँ कहती, महाराज नहीं, आप जरा अपने हाथ को हटा करके तो देखिए, जैसे उसके अपने हाथों को ढीला कीजिए, अपनी बाहों को ढीला कीजिए और हटाइए। और वैसे उन्होंने जैसे हाथ हटाने के लिए कहा तो माँ से संत ने कहा, माता तू समझ गई है ना, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समझा रहा था, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आप मेरे को कह रही थी ना कि मुझे मोह से छुड़ा दीजिए, जैसे वृक्ष ने मुझे नहीं पकड़ा हुआ था, मैंने वृक्ष को लिपटाया हुआ था, उसी तरह से आपने संसार को लिपटाया हुआ है, संसार ने आपको नहीं लिपटा, संसार आपको नहीं लिपटा हुआ, संसार ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने संसार को पकड़ रखा है। ये बात आपकी समझ में आ गई ना, ये आपके प्रश्न का उत्तर था। तो वास्तविकता यही है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं संसार में ऐसा उलझ गया हूँ, संसार ने मुझे मानो धर दबोच लिया हो, जकड़ लिया हो। हम कहते हैं मोह से छूटना तो चाहते हैं पर छूट नहीं पाते, संसार छोड़ता नहीं है। वास्तविकता से विचार करें तो संसार की कहीं कोई पकड़ नहीं है, पकड़ है तो केवल हमारी अपनी पकड़ है, और अपनी पकड़ भी कौन से संसार की है, ईश्वर प्रदत्त संसार याद रखना, कभी किसी व्यक्ति के लिए बंधन का कारण नहीं हो सकता। ईश्वर प्रदत्त जो संसार है, मैंने आप लोगों से कहा ईश्वर प्रदत्त शरीर, ईश्वर प्रदत्त इंद्रियां, ईश्वर प्रदत्त संसार कभी हमारे लिए कोई बंधन का कारण नहीं बन सकता। इस संसार के साथ साथ एक और संसार, जिस संसार को हम अपने भीतर स्थान दे देते हैं, अपने अंदर बिठा लेते हैं, वो संसार कौन सा संसार? बोले जो मोह के द्वारा स्वयं स्वरचित संसार है, जिस संसार को हमने बनाया है। बोले हमने क्या बना लिया संसार को? बोले हाँ, एक बेटा तो वो जो भगवान ने दिया, एक पुत्र आपको भगवान ने दिया, और एक पुत्र जो आपको भगवान ने दिया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका पुत्र दूर यहां से कहीं विदेश गया हुआ है, मान लो अमेरिका गया हुआ है, और वह वहां आनंद के साथ रह रहा है। मां को बड़ी प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र मुझसे दूर अमेरिका में जाकर पढ़ रहा है, रह रहा है। मां बड़ी खुश है, बच्चा भी बिल्कुल ठीक ठाक है। किसी ने झूठ मूठ मां को यह समाचार दे दिया, झूठा समाचार सुन लिया कि तेरा बेटा वहां अस्वस्थ है, मां व्याकुल हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, पता नहीं मेरा बेटा कितना परेशान होगा, कितना दुखी होगा, कितना अस्वस्थ होगा, क्या होगा उसके लिए, उसका रुदन शुरू हो जाएगा। और ठीक उसका उल्टा कि बच्चा स्वस्थ है और अस्वस्थ होने का समाचार मिल गया, अस्वस्थ है और उसके पास उसकी अस्वस्थता का कोई समाचार नहीं है, मां बड़ी प्रसन्न होकर चल रही है कि मेरा बेटा अमेरिका में है, उसको कोई दुख नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है जो पुत्र उसका अमेरिका में बैठा है, वो मां को न तो रुला रहा है न हंसा रहा है। हंसाने और रुलाने वाला जो पुत्र है, वो मां के हृदय में जो मेरा बेटा, मेरापन है, पुत्र के प्रति जो मेरापन और जिसे हम आसक्ति कहते हैं, वो मेरेपन का जो मोह है, मोह जो मेरेपन की जो गांठ है, मेरेपन की जो कसक है, खिंचाव है, वो हमारे लिए दुख का कारण है। इसी प्रकार जहां जहां मेरापन, अपनापन हम स्थापित करते हैं, मैं, मेरा, मेरी, इस प्रकार से जहां जहां ये मैं, मेरा, मेरी जोड़ लेते हैं, वहां वहां हमारी आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति के साथ हम उसके साथ मोह कर बैठते हैं, और वही हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। नारायण, मैं, मेरा, मेरी, इस प्रकार वह जो मैं, मेरा, मेरी का जो संसार है, वो हमारे लिए दुख का कारण है। भगवान का बनाया हुआ संसार, ईश्वर विरचित संसार, जो जगत हमें दिखाई पड़ रहा है, जो जगत हम जिसे व्यवहार में, जिसकी प्रतिभाषित व्यवहारिक सत्ता दिखाई पड़ रही है, ये संसार कभी किसी के लिए दुख का कारण नहीं हो सकता। भगवान ने वायु बनाई है, सब इसमें आराम से सांस ले रहे हैं। भगवान ने प्रकाश दिया है, सभी जीव इससे जीवन जी रहे हैं। भगवान ने रूप का दर्शन कराया, भगवान ने गंध का दर्शन कराया, भगवान ने जल का दर्शन कराया, रस का दर्शन कराया, रस की रचना की, इससे सबको लाभ मिल रहा है। समष्टि में, ये समष्टि के लिए ईश्वर प्रदत्त जो समष्टि है, वो व्यष्टि के लिए कभी दुख का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि व्यष्टि में यदि कमी आ जाती है तो समष्टि से हम उसकी पूर्ति करते हैं। समष्टि के द्वारा उसकी पूर्ति करके। मान लो हमारे शरीर में जल की कमी आ जाती है, हम बाहर से जल लेकर के उसकी पूर्ति करते हैं। हमारे अंदर वायु की कमी होती है, हम उसे बाहर से सांस लेकर के उसकी पूर्ति करते हैं। तो व्यष्टि में जो अपूर्ति होती है उसकी पूर्ति के लिए पूर्ति कहाँ से होती है, बोले समष्टि से। तो समष्टि का जो सुख है, समष्टि का जो जगत है, यह तो सबकी पूर्ति के लिए है, सबकी तृप्ति के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। इसलिए ये कभी दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण कहाँ है, बोले जहाँ इस समष्टि से जो वस्तु हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसमें हम मेरेपन की मोहर लगा लेते हैं, मेरा, उसमें अपना स्व का अधिकार स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी है, पृथ्वी के एक छोटे से भूखंड में एक लकीर खींच करके ये जमीन मेरी है, और उस पर हम दावा करते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, मेरा स्वामित्व है, मेरा मालिक, मैं इसका मालिक हूँ, उस पृथ्वी को मैं इस पृथ्वी का मालिक हूँ। ऐसा दावा करते 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 इस पृथ्वी में अपना अपना हक अजमाते हुए, अपना अपना हक स्थापित करते हुए कितने सारे लोग चले गए, परंतु पृथ्वी वहीं की वहीं है, वो किसी के साथ भी गई नहीं, वो किसी के साथ गई नहीं, वो तो अपनी जगह अचल। और जो आए, जो ये कहते रहे, ये दावा करते रहे, वो जो मेरी है, वो चलते चले गए, पृथ्वी अपनी जगह अटल खड़ी है नारायण। उसी प्रकार ये संसार में हम मैं मेरा करके जिस पर दावा करते हैं, वो वास्तव में वो संसार हमारे लिए दुख का कारण है। तब उपनिषद हमें ये समझाना चाहती है, श्रुति भगवती हमें ये उपदेश करती है कि जिसकी आत्मोत दृष्टि है, सर्व व्यापक सर्वभूत रूप, जो सर्वत्र आत्म स्वरूप में जिसे जगत को देखने वाला ऐसा तत्व ज्ञानी, तत्व वेता, उसे संसार में कहीं किसी के साथ कोई मोह नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, उसके भीतर मोह नहीं, मैं मेरे की भावना नहीं, वो तो सब कुछ, ये देह भी उसका, ये इंद्रियां भी उसकी, ये कार्य भी उसका, ये स्मरण भी उसका, इस प्रकार वो सर्वभूत रूप आत्मभाव में दर्शन करने वाला, जो जब मोह ही उसके अंदर नहीं है तो शोक कहाँ नारायण। शोक तो किसी काल में भी किसी के लिए करते बनता नहीं है, जैसे मोह नहीं बनता उसी तरह से शोक भी किसी काल में, क्योंकि जो यहाँ होना होता है सो ही होता है, जो नहीं होना होता है वो कभी नहीं होता। हम कहते हैं ऐसा संसार का नियम है कि प्रारब्ध के पटल पर यहाँ वही होता है जो प्रारब्ध के पटल पर लिखा होता है, अर्थात जो होना निश्चित है। इसलिए जो होना है उसके लिए क्या चिंता करनी है, और जो होना ही नहीं है सो भी उसके लिए कोई चिंता करनी नहीं है। यहाँ जो बनता है वो बिगड़ने के लिए ही बनता है, जिसका निर्माण होता है, जिसका निर्माण होता है, बोले वो एक न एक दिन बिगड़ने के लिए ही होता है। जो चीज बनती है वो बिगड़ती है, जो बिगड़ती है वो बनती है। बिगड़ा क्यों, बोले अच्छा बनने के लिए, अच्छा होने के बाद फिर वो बिगड़ा। इस प्रकार प्रकृति के नियम के अनुसार ये परिवर्तन चलता रहता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति संसार में कहीं कोई शोक नहीं करता, बोले शोक करने जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है जिसे हम ये कह सके ये नहीं होना था। ऐसा जहाँ तक हमारी बुद्धि भेद कर जाती है वहां जहां तक हमें अपनी बुद्धि जहां तक पहुंचती है वहां तक हम शक्य समझते हैं, संभव समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, और जहां बुद्धि नहीं पहुंचती है उसके लिए हम कह देते हैं ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे होना, ये नहीं होना था, ये कैसे हो गया। परंतु ऐसा कुछ संसार में नहीं था होता जो नहीं होना होता है, वही होता है संसार में जो होना ही होता है। इसलिए जो होना ही होता है, ज्ञानी इस बात को समझता हुआ संसार में कभी किसी के लिए शोक नहीं करता, न तो उसे व्यतीत होने के साथ जो बीत चुका है उसके साथ वो शोक करके चिंताग्रस्त होता है। नारायण जो निकल गया, चिंताएं का भविष्य के लिए हमें चिंता सताती है, वर्तमान के लिए हमें मोह सताता है,